स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। मोदी की चीन यात्रा में हुए कई समझौते, लेकिन क्या सीमा विवाद पर कभी ठोस बातचीत हो पाएगी?
प्रॉब्लम इसमें ये है कि मोदी जी तो तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से कोई आगे बात बढ़ नहीं रही।
आज मोदी शंघाई में उद्योगपतियों से मिलेंगे। कैसी है भारत और चीन की छवि यहाँ के छात्रों की नजर में?
चाइना में आके सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी वो ये है कि चाइना में आप कहीं भी घूमने जाना चाहें तो बहुत सुरक्षित है।
सुनिएगा ये खास रिपोर्ट, होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चीन यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज शंघाई में हैं, जहां वो कई बड़ी चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने वाले हैं। इससे पहले कल उन्होंने राजधानी बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री ली कचियांग से मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग के 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने माना कि उनके बीच सीमा विवाद समेत कई मतभेद हैं, बावजूद इसके दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि वो रमादी शहर को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों में नहीं जाने देंगे। आईएस के लड़ाकों ने शुक्रवार को अनबार प्रांत की राजधानी रमादी के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। इराकी सरकार ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है और शहर में लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में शामिल एक पुलिस कमांडर ने कहा, हम अनबार में आईएसआईएस से लड़ेंगे, भले ही कितनी भी लड़ाई लंबी चले, हम उन्हें अनबार से दफा कर देंगे। ये थे एक पुलिस कमांडर के शब्द। हालांकि शहर की मुख्य सरकारी इमारतें आईएस के नियंत्रण में ही हैं। इस बीच अमरीकी लड़ाकू विमानों ने रमादी के पास आईएस के मुख्यालय पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका में एक जूरी ने बोस्टन में हुए धमाके के दोषी जोखार सारनाएव को मौत की सजा सुनाई है। जूरी ने 14 घंटे की चर्चा के बाद ये फैसला किया। बोस्टन में 2013 की मैराथन के दौरान फिनिश लाइन के पास धमाका हो जाने से 3 लोग मारे गए थे, जबकि 260 घायल हुए थे। सारनाएव और उनके भाई पर फिनिश लाइन के पास बम रखने का आरोप था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 3.13 रुपये और डीजल के दामों में 2.71 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। बढ़े हुए दाम कल आधी रात से लागू हो गए हैं। इस महीने में लगातार दूसरी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो चीन से दक्षिणी चीन सागर में अपनी बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने का आग्रह करेंगे। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक साल में चीन ने अलग अलग विवादित द्वीपों पर लगभग 800 हेक्टेयर जमीन पर अधिकार जमा लिया है। चीन का कहना है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा। और अमरीकी सेना ने कहा है कि नेपाल में हादसे का शिकार हुए उसके हेलीकॉप्टर पर सवार लोगों में से किसी के बचने की संभावना नहीं है। ये हेलीकॉप्टर पिछले दिनों हादसे का शिकार हुआ। बीबीसी समाचार।
तारीख 16 मई दिन शनिवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। बीबीसी हिंदी सेवा के 75 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है, जिसे आप दिन भर के पहले अंक और नमस्कार भारत के दूसरे अंक में सुन रहे हैं। इस मौके पर पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार की ओर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सफर आगे भी जारी रहेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से। मोदी की चीन यात्रा के दौरान कल दोनों देशों के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर तो हुए, लेकिन सीमा विवाद पर कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आई। हालांकि मोदी ने इस पर जरूर जोर दिया कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल आवश्यक है। मोदी ने यह भी माना कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने के रास्ते में सीमा विवाद एक अवरोध है। पूरी रिपोर्ट सुनिए अशोक कुमार से।
Thank you.
बीजिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर, और इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के 20 से ज्यादा समझौते, ये सब गर्मजोशी और बढ़ती नजदीकियों के संकेत हैं। लेकिन सीमा विवाद जैसी कुछ पुरानी बाधाएं अब भी रास्ता रोक रही हैं, और चीनी प्रधानमंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने इन्हें दूर करने की बात कही।
आई स्ट्रेस द नीड फॉर चाइना टू रिकंसिडर इट्स अप्रोच ऑन सम ऑफ द इश्यूज।
मैं चीन से कहना चाहता हूं कि वो उन मुद्दों पर अपना नजरिया बदले जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और इसीलिए हम अपनी साझेदारी की सभी संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये थे मोदी के शब्द। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सीमा मुद्दे पर बातचीत जारी रहे और एक ऐसा समाधान तलाशा जाए जो दोनों देशों को मंजूर हो। साथ ही उन्होंने सीमा पर शांति बनाए रखने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। इसके जवाब में चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मतभेद होने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले दो देश अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। हम भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेदों से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साझा हित मतभेदों से कहीं बड़े हैं। दोनों ही पक्ष राजनीतिक रूप से समझदार हैं और मतभेदों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम इन मतभेदों का असर अपने रिश्तों पर नहीं पड़ने देंगे। ये थे चीनी प्रधानमंत्री के शब्द। भारत और चीन के बीच सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद है। इसके अलावा दलाई लामा को भारत का समर्थन और तिब्बत का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच बड़ी बाधा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच पिछले साल $71 अरब का कारोबार हुआ है। चीन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी भाषा में हाथ आजमाने से भी नहीं चुके। वो बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब थे और वहां उन्होंने कई ऐसे क्षेत्र गिनाए जिनमें दोनों देशों के बीच वो अपार संभावनाएं देखते हैं।
जैसे आईटी, भारत चाइना के लिए बहुत कुछ कर सकता है। टूरिज्म भारत और चाइना के बीच बहुत बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत आदान प्रदान कर सकते हैं, और इसलिए मैंने मेरे भाषण में भी विस्तार से कहा है कि आर्थिक संबंधों और समझौतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है।
अपने चीन दौरे के आखिरी पड़ाव में आज मोदी शंघाई में हैं। वो वहां भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से रखे गए स्वागत समारोह में तो शामिल होंगे ही, और साथ ही साथ चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी उनकी अहम मुलाकात होगी। उनके मेक इन इंडिया अभियान के लिए इस शंघाई दौरे को काफी अहम माना जा रहा है।
भारत और चीन के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद का क्या कोई हल निकल पाएगा? हमारे बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी शकील अख्तर ने यही सवाल पूछा रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से।
बातें ये मेरे ख्याल दोबारा से एजेंडे पे लेके आई जा रही हैं, लेकिन उसमें अब पेचीदगी ये आ रही है कि बॉर्डर पे जो पिछले 3-4 सालों में एक तवातर से इंसिडेंट्स हुए हैं, इनकर्जन्स की बात हुई है, तो उससे ये एक टेंशन बनते जा रही है। तो ये एक तरीके की ओपनिंग है, एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि मोदी जी की भी ये एक तरीके से जिज्ञासा है कि इस मामले को वो सुलटा लें, और चीन में भी एक माना जा रहा है कि बड़ी एक पावरफुल लीडरशिप आई है जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो अगर बॉर्डर विवाद के ऊपर कोई समझौता करती है जो दोनों देशों को मान्य हो, तो फिर आप अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से अगले लेवल पर लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि मोदी जी तो तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से कोई आगे बात बढ़ नहीं रही। अब मोदी जी ने ये मुद्दे उठाए हैं अपनी चीन यात्रा के दौरान, तो क्या वो सिर्फ एक खानापूर्ति की गई है या फिर चीन की तरफ से भी कोई उसका रिस्पॉन्स आया है, और कोई मैकेनिज्म इस तरह का बना है या कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिससे ये उम्मीद बने कि ये मामला अब एक तरीके की सुलझाव की तरफ जाएगा, उस पर एक सवालिया निशान है अभी।
पिछले 40-50 सालों से तो ऐसे ही मामला पड़ा हुआ है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ेगा या रेजोल्यूशन की तरफ?
देखिए, ये कहना असंभव है इस स्टेज पर। तो उम्मीद तो ये है कि ये मामला सुलझाव की तरफ जाएगा, लेकिन क्या चीन भारत को एक लिहाज से अपना एक अपने कोऑपरेटिव मोड में देखता है भारत को, क्या चीन एक पार्टनरशिप के मोड में लेता है भारत को, या वो एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता है भारत के साथ? तो फिर वो ये बॉर्डर के विवाद पर ज्यादा तनाव नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर बाकी सारे विवादों के ऊपर भी तनाव बने तो शायद फिर बॉर्डर का जो तनाव है वो भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल ये एक तरीके का बैलेंसिंग एक्ट भी होगा दोनों देशों के लिए।
हमारे सहयोगी शकील अख्तर बात कर रहे थे रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से। दो देशों के बीच आर्थिक और सामरिक समझौतों के बीच रिश्तों की डोर उस समय और मजबूत होती है जब पढ़ाई के लिए छात्र अपने देश से दूसरे देशों की ओर रुख करते हैं। भारत और चीन की बात करें तो छात्रों का आना जाना अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जो छात्र आ जा रहे हैं उनका अनुभव कैसा है और उनके मन में कैसी है इन देशों की छवि, यही जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी दिव्या आर्या ने।
मेरा नाम कुबालू है। जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है,
चीन से भारत आई पू बाइलू ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी में बीए की पढ़ाई पूरी की है। अंग्रेजी से ज्यादा अब वो हिंदी बोलने में सहज महसूस करती हैं। भारत अब उन्हें घर जैसा ही लगता है, पर एक बात है जो अब भी नापसंद है।
इंडियन के बारे में जो चीज मुझे सबसे खराब लगता है कि जो लोग समय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो अगर एक भैया ने कहा कि 5 मिनट के बाद, शायद आधा घंटे के बाद, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
पू बाइलू की ही तरह ली के भी मानते हैं कि भारत में काम करने की गति धीमी है। उनके मुताबिक वो चाहे सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर जाएं, टाल मटोल का रवैया ही मिलता है। भारत आए उन्हें 4 साल हो गए, पर मई की चिलचिलाती धूप अब भी परेशान करती है। चीन में ऐसा मौसम उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर भारत की एक और बात भी थी जो उनकी सोच के परे निकली।
4 साल पहले जब मैं दिल्ली पहुंचा और एयरपोर्ट से बाहर निकला तो बाहर देखकर मुझे लगा कि ये विकसित शहर नहीं है। मेरे मन में तो भारत की राजधानी की छवि हमारे बड़े शहरों शंघाई और बीजिंग जैसी थी, पर दिल्ली ऐसा नहीं है।
पर एक बात ऐसी भी है जिसने सबका दिल जीता। ली के दोस्त चांग यांग अर्थशास्त्र में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
भारत की सबसे अच्छी बात है मानवीय रिश्ते। यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। मैं जब यहाँ आया तो सबसे बड़ी दिक्कत भाषा की थी, पर मेरी क्लास के और छात्रों ने समय निकाल कर मुझे सब कुछ समझाया। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ 5 साल नहीं रह सकता था।
बिरयानी है, नान है,
वेजिटेरियन था कभी।
भारतीय छात्र अनुकृति, बियात्रिशा और विकास चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। वहाँ के पढ़ाई के स्तर से ये छात्र बेहद खुश हैं, पर मनपसंद खाना ना मिल पाना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बियात्रिशा मुखोपाध्याय चीनी भाषा में पढ़ाई कर रही हैं। वो कहती हैं,
एक चीज जो नहीं पसंद आई मुझे चाइना के बारे में वो है यहाँ का खाना। यहाँ के खाने में बहुत ज्यादा तेल है और जिस प्रकार की चीजें यहाँ लोग खाते हैं उनकी आदत नहीं है हमें, तो वो चीज थोड़ी अजीब लगती है।
स्टॉल लगाना है, स्टॉल में रहना है।
चीन में हर तरीके का नॉन वेजिटेरियन खाना खाए जाने से अनुकृति भी अजीब महसूस करती हैं। पर चीनी साहित्य की पढ़ाई कर रही अनुकृति को भारत के मुकाबले चीन में एक बात बहुत खास लगती है।
चाइना में आके सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी वो ये है कि चाइना में आप कहीं भी घूमने जाना चाहें तो बहुत सुरक्षित है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है।
क्या बनाना है भाई?
बिहार के सीतामढ़ी से चीन गए 32 साल के विकास कुमार सिंह 8 साल से चीन में रह रहे हैं। वो बताते हैं कि भारत में रहते हुए उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि विकास के मामले में चीन भारत से कितना आगे है।
चीन में आने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा शौक लगा वो ये है कि यहाँ का जो आर्थिक विकास है वो देखकर मुझे बहुत ही एक बड़ा झटका लगा। क्या मैं चीन आने से पहले चीन के बारे में सोच रहा था, और चीन आने के बाद जो मैंने देखा वो एक बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए।
चीन में भारतीय छात्रों और भारत में चीनी छात्रों से बातचीत कर जाहिर हो जाता है कि दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के बारे में कितनी गलत फहमियां या अधूरी जानकारी के मिथक हैं। शिक्षा के बहाने मेलजोल बढ़ने से शायद ये कम हो सके। बीजिंग से बीबीसी संवाददाता शिनयान यू के साथ दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
तो भारत और चीन के बारे में एक दूसरे के छात्रों की राय। चीन के साथ 24 समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग से शंघाई जा पहुंचे हैं, जहां वे आज उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं चीन यूएनआई के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी के पास और पूछते हैं कि आज नरेंद्र मोदी का और क्या कार्यक्रम है। मुकेश जी।
हाँ बताइए।
नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम है और शंघाई
जब आप मुझसे इस समय बात कर रहे हैं तो यहाँ जिस कार्ल्टन होटल में उठा रहे हैं उसके फोर्थ फ्लोर पर चाइनीज सीईओ की मीटिंग यहाँ पर चल रही है। वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक घंटे की इस मुलाकात के बाद आगे उनकी चाइना इंडिया बिजनेस फोरम में बातचीत होने वाली है। शाम को फुदान यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर है। इसके बाद वो अपने ही लोगों से यानी कि भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में एक रिसेप्शन पर जाएंगे जहां उनका घुल मिला होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शंघाई जो चीन की बिजनेस कैपिटल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से शाम तक का जितना भी कार्यक्रम है वो भी बिजनेस पर केंद्रित है। तो ये आज की मीटिंग पर भारत की खास तौर से निगाह इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के बीच व्यापार जो 40 बिलियन डॉलर के लगभग पहुंच चुका है, लेकिन उसमें बहुत हद तक उसमें सारा फायदा चीन की ओर जाता है। जो 37 बिलियन डॉलर उनके पास है जो एक्सपोर्ट कर, भारत की कोशिश यह है कि किस तरह से ट्रेड इम्बैलेंस को दूर किया जाए। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का आज का शंघाई प्रवास बहुत मायने रखता है।
मुकेश जी, संक्षेप में ये बताइए कि वहाँ के मीडिया में, वहाँ के अखबारों में मोदी की यात्रा को कैसे देखा जा रहा है?
दरअसल चीन के मीडिया की अगर सोच देखें, जो वो सरकार की ही सोच उसमें होती है, चाहे वो चाइना डेली हो या पीपल्स डेली हो और थोड़ा सा अपनी को आजाद समझने वाला ग्लोबल टाइम्स हो, इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं और एक तरह से काफी हद तक एक सद्भावपूर्ण सुर्खियां मुझे यहाँ को देखने को मिली। लेकिन उसमें ज्यादा पर्सपेक्टिव चीन की अपने बिजनेस इंटरेस्ट का ही दिखाई दिया, जबकि जो भारतीय इंटरेस्ट हैं इसमें आप सीमा विवाद कह लीजिए या कुछ ऐसे मुद्दे कह लीजिए जिस पर, जैसे व्यापार असंतुलन का ही मुद्दा कह लीजिए।
जी मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, थोड़े समय की कमी है, हम आपसे फिर अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। ये थे यूएनआई के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक। और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
अपनी चीन यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई में हैं, जहां वो कई जानी मानी चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिल रहे हैं। वो भारतीय समुदाय की तरफ से रखे गए एक स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आईपीएल में आज दो मुकाबले होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब। शाम 4 बजे से मोहाली में भिड़ेंगे तो रात 8 बजे से मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पोप फ्रांसिस आज वेटिकन में फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगे। इस मौके पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इराक में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने रमादी शहर पर नियंत्रण कर लिया है, जबकि जवाब में इराक की सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और शहर में घमासान जारी है। उधर सऊदी अरब का कहना है कि यमन में विद्रोहियों की तरफ से हो रहे संघर्ष विराम को देखते हुए उसका संयम जवाब दे रहा है। इस बीच यमन के संकट को सुलझाने के लिए होने वाली बातचीत से पहले आज यमन की निर्वासित सरकार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वैसे यमन के हुती विद्रोहियों ने वार्ता का बहिष्कार किया है।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। एक बार फिर अशोक कुमार आपके पास चलते हैं, बताइए
जी। पंकज जी, आज के सारे अखबारों की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा, और लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर उनकी सेल्फी की चर्चा है। वही सेल्फी जो चीनी प्रधानमंत्री ली केचियांग के साथ उन्होंने ली, और इसे कई जगह दुनिया की सबसे ताकतवर सेल्फी बताया जा रहा है। बात अगर सुर्खियों की करें तो अलग अलग अंदाज के हेडलाइन नजर आ रही हैं। नई दुनिया लिखता है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं, और सीमा विवाद का हल निकालने के लिए सहमत हुए दोनों देश। नवा टाइम्स ने इसे लिखा है बॉर्डर पर चीन की दीवार। इसके अलावा सीमा विवाद, स्टेपल वीजा जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया बदले चीन, ये बयान है मोदी का, जिसे दैनिक भास्कर ने अपनी पहली खबर बनाकर प्रकाशित किया। नई दुनिया के कार्टून भी यहाँ गौरतलब है, जिसमें दो भारतीय अधिकारी चीन दौरे को लेकर बात कर रहे हैं। एक कहता है कि बेशक हमारी प्राथमिकता रिश्ते सुधारने की है, पर उनसे ये कह दीजिए कि पहले अपने नक्शे सुधार लें। तो चीन की यात्रा जो मोदी की, इस तरह अखबारों ने उसको लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका।
नमस्कार भारत, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 और 8:00।
और अब समय है फिल्म समीक्षा का। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे वेलवेट की समीक्षा कर रही हैं नम्रता जोशी, और उनसे बात कर रही हैं राखी शर्मा।
जिंदगी की रेस में जुमू उठा के दौड़ा, जिंदगी ने मारी लात पीछे छोड़ा, तू है वो टट्टू गधे सी जिसकी चाल है।
इस हफ्ते की रिलीज है डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट। फिल्म देखकर आ चुकी है नम्रता जोशी, हमारी फिल्म क्रिटिक। नम्रता, प्रोमो से तो थोड़ी ठंडी लग रही थी फिल्म, बॉम्बे वेलवेट में थोड़ा दम है?
ट्रेलर्स चाहे ठंडे रहे हो, लेकिन अनुराग कश्यप से हमेशा उम्मीद रहती है कि एक बेसिक लेवल ऑफ क्राफ्ट उनका है, एक बेसिक स्टोरी टेलिंग उनकी एबिलिटी है। डिस्पाइट द ठंडे ट्रेलर्स, आई थिंक एक होप थी कि अगर उनकी फिल्म है तो कुछ तो अच्छा होगा देखने को, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसे इस साल की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मानूंगी इस फिल्म को। एक कारण उसका ये है कि इतने बड़े एक्टर्स, इतनी महंगी फिल्म आप लेके बना रहे हैं, लेकिन आप उसके अंत में कुछ नहीं दे रहे हैं। ना ये फिल्म कमर्शियली एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है, ना ये क्रिटिकली ज्यादा एक्लेम हासिल कर पाएगी, ना इस फिल्म में इमोशन है आपके लिए, ना इसमें आपके लिए एंटरटेनमेंट है। आई थिंक एक लेवल पे ये है कि मुझे जो फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगी कि वो फिल्म में इतना ज्यादा ध्यान फिल्म के लुक पर कर दिया गया है कि कैसे सेट्स हैं, क्या कपड़े हैं, क्या सिगरेट्स हैं, क्या ट्राम जो बॉम्बे की वहां पे चलती है वो है। मुझे लगा ये सब कुछ कहीं पे जो फिल्म का एक अपना कहानी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, स्केल पर ज्यादा ध्यान है, कहानी किरदार मुझे लगा इतने ज्यादा ध्यान से नहीं गढ़े गए हैं। मुझे इस फिल्म को देख के यही लगा कि उम्मीदें बहुत थी लेकिन फिल्म ने मुझे कुछ नया नहीं दिया।
नम्रता, केमिस्ट्री कैसी है रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच?
प्रेम कहानी जो होती है ना, अगर उसमें आप किरदारों को फील ना करें, प्रेम कहानी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यू हैव टू फील फॉर द टू लवर्स। मुझे यहाँ पे उनके लिए कोई फीलिंग नहीं आई, मतलब खत्म हुई तो लगा कि बहुत अच्छा हुआ फिल्म खत्म हो गई।
छुपा भी ना सके, जता भी ना सके, तो फिर फिजूल है ये किस्सा।
करण जौहर, करण जौहर का आई थिंक पहला कोई फुल फ्लेश्ड रोल किया उन्होंने।
हाँ, करण ना, यू नो ही कम्स टू योर होम एवरी डे, क्योंकि उनके इतने शोज टेलीविजन में चल रहे हैं, तो मुझे कहीं पे ऐसा लगा था कि करण जौहर शायद करण जौहर लगेंगे, और शुरुआत के कुछ सीन्स में मुझे लगा भी कि शायद वो करण जौहर ज्यादा हैं, कैजाद कम है। लेकिन यू नो अगेन, मैं करण जौहर ने परफॉर्मेंस अच्छी करी है मैं नहीं कह सकती, लेकिन अनुराग ने कुछ कोशिश करी है उनको इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करने के लिए।
और रणबीर और अनुष्का के बारे में क्या कहेंगी?
अनुष्का और रणबीर भी ओके हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो मुझे करते हुए नजर नहीं आए। अगर कुछ किरदार इंटरेस्टिंग उभर कर सामने आए हैं तो जिमी मिस्त्री का किरदार है, जो मुझे लगा वो टॉरेंट न्यूज़पेपर के एडिटर दिखाए हैं।
ठीक है नम्रता, फिर हम मार्क्स दे देते हैं फिल्म को।
फिल्म को मैं 5 में से 2 नंबर दूंगी, और 2 नंबर में से जो 1 नंबर है वो शायद अमित त्रिवेदी के म्यूजिक का ही है।
और अब खेल और खिलाड़ी आदेश कुमार गुप्त के साथ।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत आईपीएल 8 से, जहां कल बारिश की बौछार के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर जीत के लिए केवल 6 ओवर में 81 रनों का लक्ष्य मिला, जो उसने एक गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 135 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने नाबाद 52 और मोजेस एनरिकेस ने केवल 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। जवाब में गेल और विराट कोहली ने डेल स्टेन के पहले ओवर में 17 रन जोड़कर तूफानी शुरुआत की। दूसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार ने किया, इसमें गेल ने 2 छक्के और 3 चौकों के मदद से 24 रन बनाए। गेल 10 गेंदों पर 35 रन बनाकर हेनरिकेस का शिकार बने। अगली ही गेंद पर हेनरिकेस ने एबी डिविलियर्स को डेल स्टेन के हाथों कैच कराया। अब स्कोर 2 विकेट पर 43 रन हो गया। संदीप सिंह ने डिविलियर्स की जगह ली, वो परवीन कुमार की गेंद पर मॉर्गन को कैच दे बैठे। अब दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाला, उधर विराट कोहली ने परवीन कुमार की गेंद पर छक्का जड़ा। आखिरी ओवर और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। दूसरी गेंद पर कार्तिक भी रन आउट हुए, पर विराट कोहली ने हार नहीं मानी। तीसरी गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, चौथी गेंद थर्ड मैन पर चौके के लिए गई और पांचवी गेंद पर वार्नर गेंद के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए और इसके साथ ही बेंगलोर जीत गया। कोहली 19 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के सहित 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वार्नर की नादानी टीम पर भारी पड़ी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर के 13 मैचों में 15 अंक हो गए। आज आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना किंग्स 11 पंजाब से और दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। उधर भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने बांग्लादेश का दौरा करेगी। भारतीय टीम में कौन से खिलाड़ी होंगे, इसके लिए भारत के पूर्व बल्लेबाज संदीप पाटिल की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक 20 तारीख को होगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम बांग्लादेश में 1 टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी, लेकिन बातचीत भारत और पाकिस्तान के टूटे क्रिकेट रिश्तों को जोड़ने की भी हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने भारत का दौरा किया। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर की माने तो कुछ उम्मीद बंधती है।
बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में भारत पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज को लेकर बातचीत चल रही है। दिसंबर में फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अनुसार ये सीरीज पाकिस्तान को होस्ट करनी थी। पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि भारत की टीम वहाँ पर जा सके, तो ये सीरीज कहाँ पर हो या ना हो, अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने बातचीत की शुरुआत की है और बीसीसीआई इस पर विचार कर रहा है।
और अब बात बैडमिंटन की। भारत साल 2017 में विश्व सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो कोची में आयोजित की जाएगी। लेकिन पिछले दिनों सुधीर रमन कप में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और वो पहले तो मलेशिया से 3-2 से और उसके बाद कोरिया से 4-1 से हार कर बाहर हो गया। कोरिया के खिलाफ तो भारत की साइना नेहवाल ही जी सकी। भारत के पूर्व एशियाई चैंपियन दिनेश खन्ना भारत के खेल को लेकर कहते हैं,
साइना नेहवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर 5 जब मैचेस हों तो उसमें 3 मैच आपको जीतने हैं अगर आपको टाई जीतनी है तो। पर जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, मिक्स डबल का सवाल है, मेरे को उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी और उसी के अनुसार जो है ये नतीजा आया है।
खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चीन यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज शंघाई में हैं, जहां वो कई बड़ी चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने वाले हैं। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि वो रमादी शहर को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों में नहीं जाने देंगे। आईएस के लड़ाकों ने शुक्रवार को रमादी के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिका में एक जूरी ने बोस्टन में हुए धमाके के दोषी जोखार सारनाएव को मौत की सजा सुनाई है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 3.13 रुपये और डीजल के दामों में 2.71 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।